بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جو بھائی ساؤنڈ سسٹم کے ماسٹر ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی آواز کو نارمل کر دیں, پتلی کر دیں, باریک اور ایکو ختم کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر بس کریں. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر. آواز مناسب ہے نا؟ پہلے والی مناسب تھی نہیں تھی؟ کہا کیوں نہیں؟ اصل میں اگر کوئی بات سمجھنی اور سمجھانی ہو تو اس میں دیر تک توجہ کرنی پڑتی ہے. دیر تک سننے کے لیے وہ آواز انتہائی بھیانک تھی, کان ٹھپ ہو جاتے, کان سنتے رہتے, دماغ ماؤ ہو جاتا. اس لیے کسی بات کو سننے کے لیے ساؤنڈ سسٹم کی بہتری یہ بھی ضمانت ہے. اب کئی مرتبہ ساؤنڈ سسٹم وہ ہوتا ہے جو سیاسی جلسوں میں استعمال ہوتا ہے, جس میں آواز کو صرف پہنچانا ہوتا ہے دلی تک, شور شرابہ ہنگامہ, یا اور کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے یہاں اس میں صرف شور مطلوب ہوتا ہے. ہمارے یہاں شور مطلوب نہیں ہے, ہمارے یہاں بات کو صحیح طریقے سے پہنچانا مطلوب ہے. تو ساؤنڈ ایسا ہونا چاہیے جیسے آدمی کی ریئل آواز ہوتی ہے, صاف ستھری. بس جیسے میری آواز ہے وہی آواز ذرا ڈبل تبل ہو کے آگے تک پہنچ جائے تاکہ پیچھے بیٹھنے والوں تک بات پہنچانے میں مجھے بھی زور نہ پڑے اور سننے میں ان کو بھی تکلیف نہ ہو. یہ ہے اس مکبر الصوت کا مقصد, باقی اور کچھ بھی مقصد نہیں ہے اس حکم کا. کاش کے ساؤنڈ والے جو ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں, اور ایک آدھ تقریر ان سے بھی کروانی چاہیے تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ کتنا زور لگتا ہے بولنے میں اور سننے میں. خیر یہ بات تو کسی اور سے متعلق تھی. دوستو, اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی کے قیمتی لمحات عطا فرمائے ہیں صبح اور شام کی شکل میں. بہت سارا وقت گزر گیا اور اب پتہ نہیں بچا کتنا ہے. یہ بال دیکھ کے تو لگتا ہے جو وقت گزر گیا وہ زیادہ گزر گیا اور جو بچا ہے تھوڑا سا بچا ہے. اس لیے تھوڑے سے وقت میں گزرے ہوئے کی تلافی بھی کرنی ہے اور آئندہ کی تیاری بھی کرنی ہے, جو بہت مشکل کام نظر آتا ہے. اس لیے سیدھا سیدھا بس مسئلہ حل اس طرح سے ہوتا ہے, اللہ سے ہم دعا کریں آج ہی سے اور ابھی سے اللہ گزری ہوئی زندگی کو, آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے اور ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے. جس طرح سے آپ نے ہمارے بالوں کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا, اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے. بہت زمانہ ہو گیا سنتے سنتے, اب ضرورت ہے اس بات کی کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کر لیں. جو کچھ سنایا گیا, جو کچھ سنا گیا اس پر عمل پر آ جائیں. انشاءاللہ پھر دیکھیے زندگی کی صبح و شام کا لطف کیا ہوتا ہے. آج کی اس محفل میں اور اس مجلس میں جب کہ آپ بہت دور دراز سے چل کر آئے ہیں, بہت سی سازش سے محبت رکھتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں سے انگول سے اس طرف سے چل کر آئے, اور صبح سے چلے ہوئے تھے, رات سے چلے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. یہ آنا صرف رسمی نہ ہو, یہ ماہانہ مجلس میں شرکت کرنا یہ کوئی انجوائے نہ ہو کہ آئے ذرا گھوم پھر کے چلے گئے, جی خانقاہ کے نام پر ایک خاص قسم کا پکوان بنتا ہے, جی سیدھا سادہ چلو وہ کھا کے آئیں گے مزہ کریں گے. نہیں, یہ نیت نہیں. نیت یہ ہوئی اللہ اب کی بار مجلس میں ایسی بات کانوں کے راستے سے دل اور دماغ میں پہنچا دیجئے جو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے. ایک ماں کے اگر دو بچے ہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ماں کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ اچھا, میں نے اور آپ کے سر میں دو آنکھیں لگی ہوئی ہیں, آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک آنکھ اچھی ہے دوسری خراب ہے؟ मुझे एक आंख से प्यार है दूसरी से प्यार नहीं है कोई कह सकता है? जैसे सर में लगी हुई दोनों आंखों से आदमी बराबर की मोहब्बत करता है, ठीक इसी तरह एक माँ अपने दोनों जोड़िया बच्चों से बराबर की मोहब्बत करती है। तो मोहब्बत को तोल के देखा जाए तो दोनों सेम है। लेकिन अब ये बताओ कि माँ गोद में किसको लेती? दोनों बच्चे लेटे रहे हैं और दोनों सो रहे हैं, तो किसको गोद में लेगी? उसको लेगी जो बच्चा रोएगा, उसको सीने से लगा लेगी। असल भाई तो हम बंदे होने में तो अल्लाह के सब बराबर, लेकिन जितना तड़पेंगे, जितना रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह ताला की रहमत के उतने ज़्यादा करीब होंगे। जैसे बच्चा जितना तड़पेगा माँ की छाती और सीने के उतना ज़्यादा करीब होगा। बस ये तिल्ली लगाने की ज़रूरत है, आतिश इश्क आतिश मोहब्बत अपने सीने में पैदा करने की ज़रूरत है। तो एक ज़माना हो गया ज़िंदगी गुजारते गुजारते सुनते सुनते सुनाते सुनाते, अब वक्त आ गया है कि हम अमल पे खड़े हो जाएं। दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। सुबह होती है शाम होती है, यूँ ही ज़िंदगी तमाम होती है। दो तीन साल से तो वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि हाथों से वक्त निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। रमज़ान से पहले फिक्र थी रमज़ान आने वाला, आके चला भी गया नए पुराने भी हो गए। फिर हज आया आके चला भी गया नए पुराने हो गए। जी मुहर्रम का महीना आके चला भी गया नए पुराने हो गए। रबी अव्वल का सामने है, या तो कल हो जाए या परसों पहले हो जाए। जी तो दिन और रात बस दिन जाता है रात आती है, रात जाती है दिन आता है। दोस्तों बरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई। वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि वक्त के पहले साल कई सालों में आता था। मैं अपने वतन मेरठ से पढ़ने के लिए गुजरात सूरत में आता था तो महल्ले की बूढ़ी औरतें जवान सब रोते थे, ये बच्चा इतनी दूर पढ़ने जा रहा है। फिर बूढ़ी औरतें पूछती थी, बेटा कब आओगे? एक साल में। एक साल में ताज्जुब का, एक साल में। और वाकई वो एक साल इतना भारी भरकम था, ऐसा लगता था कई साल में आता था। अब तो साल महीने के बराबर हो गया। ये कारखाने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिनसे पूछो अभी तनख्वाह देके अभी जी उंगलियों का थूक सूखता नहीं है जी, कि दूसरा महीना आ जाता है सैलरी देने के लिए। ये मदारिस वालों से और दर्जगाह चलाने वालों से पूछो, महीना इधर पूरा नहीं होता कि दूसरे की तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं दोस्तों? भाई कुछ तो हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। मैं रास्ते भर पूछता है साथियों से, ये क्या है? किसी का गेट मदरसे जैसा, किसी का मस्जिद जैसा, ये सब कारखाने। मैं सोच रहा था कि पैरों की हिफाजत के लिए पूरे शहर में विशारा मरवानी पेट में रामपुर में पैरों की हिफाजत के लिए एक चीज़ बनाई जा रही है जिसको शूज़ और जूता कहते हैं। पैरों की हिफाजत के लिए इतना बड़ा अमला काम कर रहा है। इसी कारखाने के दरमियान एक इदारा अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है जो दिलों की हिफाजत का सामान फराहम करता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि पैरों की हिफाजत के लिए सामान कितना तैयार हो रहा है और कितने लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं, और दिल का सामान कितना फराहम हो रहा है, कितने लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये भी तो ज़रा रेशियो निकालने की ज़रूरत है। बहरहाल इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी ज़िंदगी को अमल पर ले आए, अपनी ज़िंदगी को अमल पर ले आए, गफलत से निकलें, गफलत से निकलें। और अमल सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सर पर पगड़ी रख लें, सर पर टोपी रख लें, सफ़े सफ़ेद पहन लें, दाढ़ी रख लें, सफ़े वल में नमाज पढ़ें, हाथ में तस्बीह मुराकबा जिक्र तिलावत नहीं। सिर्फ इतने काम के लिए प्यारे नबी को अल्लाह ने नहीं भेजा था। इतने से काम के लिए सब जंगें नहीं हुई थी, इतने से काम के लिए हक को बातिल का मारे का नहीं हुआ था, इतने काम के लिए इतनी बड़ी जद्दोजहदें नहीं हुई थी, सिर्फ इतने से काम के लिए इतनी औरतें बेवार बच्चे यतीम नहीं हुए थे, इतने घर वीरान नहीं हुए थे। हमें चाहिए कि हम अपने दिल को बनाएं और 100% दीन पर ज़िंदगी गुजारें। ये तो दीन का 5% शोभा है, तिलावत जिक्र कुछ वज़ाकता कुछ आमाल, ये तो 5% है, बाकी 99-95% तो बहुत कुछ है। तो हम दीन बस इसी को समझें नहीं, अपने आप को हम ऐसा बना लें कि हम जो करें दीन के मुताबिक करें, जो करें सुन्नत के मुताबिक करें। हमारे एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि भाई हर काम सुन्नत के मुताबिक करो। तो कहा ये तो बहुत बहुत भारी काम है, हर काम सुन्नत के मुताबिक करें। कहा अच्छा आसान कर देता हूँ, हर काम छोड़ो, जो करो सुन्नत के मुताबिक करो, जो भी करो सुन्नत के मुताबिक करो। तो कुछ आसान हो गया कि नहीं? हम जो करें, जो भी काम करें सुन्नत के मुताबिक करें। सुन्नतें तो बहुत सारी हैं, अब सबका तसव्वुर करना वो तो बहुत भारी काम हो जाएगा। लेकिन बस अभी आप यहाँ से उठ के जाएंगे, अब चप्पल पहनना है, तो चप्पल पहनने की सुन्नत क्या है? दाएं पैर में पहले, बाएं में बाद में, हो गया सुन्नत। मस्जिद में दाखिल होना है, दाएं पैर पहले, बाएं बाद में, निकलते हो बाएं पहले, दाएं बाद में। खाना खाना है, पहले हाथ धोने, सुन्नत समझ कर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दाएं हाथ से खाएं, चबा के खाएं जी। अब उसके बाद हाथ धोएं, सुन्नत है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस्तंजा खाने से जाना, सोने से पहले फारिग होना है, बाएं पैर पहले दाखिल करें, दाएं बाद में दाखिल करें। निकलते वक्त इसको उल्टा करें जी। सोते वक्त कपड़े निकालने हैं तो बाएं से पहले, दाएं से बाद में, और पहनते वक्त दाएं पहले, बाएं बाद में। गर्ज ये कि हर अमल सुन्नत के मुताबिक करें, ये तो बहुत भारी है। बस जो करें वो सुन्नत के मुताबिक करें। तो ये थोड़ा थोड़ा काम हुआ। एक नौजवान ने कहा कि हज़रत बदनिगाही से बचना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा बेटा अगर बचना मुश्किल होता तो अल्लाह ताला मुश्किल काम का हुक्म ही ना देते, और अगर अल्लाह मुश्किल का हुक्म देते तो अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह ज़ालिम होते, और इन्नल्लाह लैसा बिज़ालिमिल आबिद, अल्लाह अपने बंदों पर ज़ालिम नहीं। मगर अब इसको ज़रा तरतीब से समझ लो। आप अपने नफ्स को ये मत कहो ज़िंदगी में कभी बदनिगाही नहीं करनी, ये मत कहो। बल्कि घर से निकलो मदरसे तक तो यूँ कहो अपने नफ्स को, देख भाई यहाँ से लेके मदरसे तक बदनिगाही नहीं करना, यहाँ से लेके मदरसे तक बदनिगाही नहीं करना, जिक्र करते हुए चलना है। तो नफ्स इसके लिए तैयार हो जाएगा। फिर जब हम मदरसे पहुँच गए तो कहें शाबाश शाबाश, तूने मेरा बड़ा साथ दिया भाई, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। मसलन अपने नफ्स को शाबाशी दे। फिर जब मदरसे से निकले फिर कहते देख अब घर जा रहा हूँ, तो घर तक बदनिगाही मत करना जी। तो इतने देर के लिए वो तैयार हो गया। सुबह से कहते देख आज शाम तक बदनिगाही बिल्कुल नहीं करना, मर गया भाई। नफ्स कहेगा नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम, इतनी बड़ी ड्यूटी निभाना मेरे बस की, इतना बड़ा जॉब मेरे बस की नहीं है। तो बड़ा बोझ डालोगे तो ये सहारना मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा करके डालो आसान। ये जो घोड़े गधों को राउस किया जाता है शुरू शुरू में, तो थोड़ा थोड़ा वजन का आदि बनाया जाता है, फिर अल्लाह पाक इनको राउस कर देते हैं, अल्लाह इनको राउस कर देते हैं। छोटे बच्चों से काम लिया जाता है, नई नई गाड़ी आती है तो 300-400 किलोमीटर की लिमिट होती है कि इनको ज़रा अंडर लिमिट चलाएं, इनको ज़्यादा 40 के ऊपर न दौड़ाएं, इसलिए कि इनका इंजन घिसेगा, राउस होगा जी, उसके ज़रात निकलेंगे, लिहाजा ज़्यादा तेज़ ना चलाएं। जब एक दो सर्विस हो जाए उसके बाद चाहे जितना दौड़ा। तो हर चीज़ की तरतीब होती है काम करने की, और इसी को समझना, इसी का नाम मेहनत, इसी मेहनत का नाम इस्लाह है, इसी का नाम तसव्वुर है, इसी का नाम इस्लाह, इसी का नाम तरबियत, इसी का तसव्वुर। तसव्वुफ नाम किसी चीज़ के उड़ने का नहीं है। बहुत से बच्चे आके कहते हैं हजरत मैं इधर जिक्र करता हूँ तो इधर भी कुछ हो रहा है, हमें आज तक नहीं हुआ तुम्हें कहाँ से होने लगा। सबसे ज्यादा मेहनत तो हमने कर रखी है, क्या तमाशा है सभी। मैं हजरत एक तरफ जिक्र करता हूँ तो ऐसा लगता है सब जगह जिक्र हो रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि काम बन गया मेरा, जल्दी से खिलाफत दो। इस खिलाफत की तमन्ना ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है उम्मत का कि पूछो मत। मुरीद तो बने नहीं और मुराद और खलीफा बनने की बात कर रहे हैं, चलना तो आया नहीं और उड़ने की बात कर रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता मरकज निज़ामुद्दीन पर बहुत जमाने पहले की बात है, बड़े अकाबिर मशाइख हयात थे। उस वक्त एक बुजुर्ग ने अपने एक दोस्त को कहा आ जाओ और आपको एक तमाशा दिखाता हूँ, तहज्जुद में आना मेरे पास एक तमाशा दिखाता हूँ। तो आए, देखा कुछ लोग जो हैं हजरत के कमरे के पास सब के सब बैठे हुए हैं, जिक्र कर रहे हैं, और कुछ लोग खराटे से सो रहे हैं। हजरत ये क्या है, ये मंजर देख लिया आपने? कहीं ये वो लोग, वो जो सो रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको खिलाफत मिल गई, और ये वो लोग हैं जो इंतज़ार में बैठे हैं कि हजरत आए देख लें कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो भाई लेके जाओ, अल्लाह अल्लाह करो सिख लाओ। कुछ अल्लाह अल्लाह करनी रहे धोखा दे रहे। मेरे भाइयों, मैं 15, 16, 18, 19 साल हो चुके हैं अल्लाह के रास्ते में निकले, एक बारिश के फासले पे मेरा दिल है, इस पर दस्तक दे रहा हूँ, ये खुलने का नाम नहीं ले रहा। देखो मैं बताऊँ तसव्वुफ़ का खुलासा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के अंदर कुछ रज़ाइल रखे हैं और कुछ फ़ज़ाइल रखे हैं। रज़ाइल यानी वो चीज़ें जो पसंदीदा नहीं होती, मसलन गुस्सा, मसलन शहवत, जी ये रज़ाइल है। माल की मोहब्बत, ये रज़ाइल है। और ये फितरी चीज़ें हैं। कोई यूँ कहे कि किसी आदमी के अंदर से गुस्सा ख़त्म हो गया, शहवत ख़त्म हो गया, मत मानना, इसलिए कि फितरी चीज़ें ख़त्म हो ही नहीं सकती। और इनके रखने की हिकमत है, अल्लाह ताला ने कुछ रखा हिकमत। जैसे सांप नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन सांप का जहर भी दवाइयों में काम आता है, और ऐसा काम आता है कि वो जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। तो जो रज़ाइल हैं अल्लाह पाक ने अपनी ख़ास हिकमत के तहत बंदे के अंदर रखे हैं, इनकी ज़रूरत है। मसलन अगर शहवत ना हो तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो बच्चे पैदा करने के लिए शहवत ज़रूरी, और बीवी भी है, बच्चे भी हो रहे हैं, और फिर ये शहवत दूसरों में इस्तेमाल हो रही तो जिना वजूद में आ रहा, तो इसका ख़त्म होना ज़रूरी, यानी इसके जहर का ख़त्म होना ज़रूरी, कंट्रोल होना ज़रूरी। इसका आप मिसाल से यूँ भी समझें कि अगर मच्छरों का वजूद दुनिया से ख़त्म हो जाए तो ये जो मच्छरदानी बनाने वाली कंपनी है, ये जो मच्छर की दवाई बनाने वाली कंपनी है, ये जो ऑल आउट और गुड नाइट बनाने वाली कंपनी है, ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अगर चोरी का वजूद दुनिया से ख़त्म हो जाए तो ये गोदरेज की कंपनी ताला बनाने वाली, ये हरिसन कंपनी ताला बनाने वाली, ये अलीगढ़ का इलाका जो ताला बनाने में मशहूर है, ये लोग क्या करेंगे? जी मालूम हुआ, चोर के वजूद की भी ज़रूरत है और मच्छर के वजूद की भी ज़रूरत है, लेकिन एक दायरे के अंदर, एक दायरे के अंदर। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो रज़ाइल रखे हैं, इनकी भी ज़रूरत है, लेकिन इनकी ज़रूरत अंडर कंट्रोल है। जहाँ कंट्रोल से बाहर होंगे ये फसाद बचाएंगे। जब आदमी का गुस्सा काबू में नहीं होगा तो ये मासूमों पे जुल्म करेगा, घर की बीवियों पे जुल्म करेगा, माँ बाप पे जुल्म करेगा, पड़ोसियों पे जुल्म करेगा। जब शहवत काबू में नहीं होगी, ये हरामकारी करेगा, ये जिना करेगा, ये बेहयाई आम करेगा। लिहाजा अल्लाह ने इंसान के अंदर कुछ रज़ाइल रखे हैं, कुछ फ़ज़ाइल रखे हैं। तसव्वुफ़ मेहनत है जिसके ज़रिए से रज़ाइल को, रज़ाइल के जहर को निकाला जाता है, उसको काबू में किया जाता है, और फ़ज़ाइल को उजागर किया जाता है, फ़ज़ाइल को उजागर किया जाता है। गुस्सा करें लेकिन उसके महल में, अगर गुस्सा नहीं करेंगे मसाजिद मदारिस और अपनी इज्मत और आबरू की हिफाजत नहीं कर सकते। शहवत अगर नहीं होगी बीवी का हक अदा नहीं कर सकते। लिहाजा कोई ये दुआ ना करे कि अल्लाह मेरी शहवत बिल्कुल ख़त्म कर दे, जी सब के सब नामर्द हो जाएंगे। उसकी ज़रूरत है उसके महल में। हाँ, हद से ज़्यादा होगी तो आदमी बेहयाई पे उतरेगा, बदकारी पे उतरेगा, उसको तशफ़ी नहीं हो पाएगा। ये है इस्लाम का एक निज़ाम। इतनी बात समझ गए दोस्तों? अब ये जो क़ुर्ब क़यामत है, क़यामत के करीब का ज़माना है, और हर आए दिन ऐसे ऐसे फितने वजूद में आ रहे हैं, इस मौके पर हम किस तरह की अपनी ज़िंदगी गुजारें? एक तो ये कि दोस्तों रोज़ाना हम कलमा पढ़ के अपने ईमान की तजदीद किया करें। अल्लाह के महबूब से फरमाया, हम करीब ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा, यहाँ तक कि अपने दीन और ईमान को दुनिया के मामूली से मालो बता के बस बेच देगा। ये महबूब वसल्लम की हदीस का मफहूम है। इसलिए हम कलमा पढ़ के अपने ईमान की तजदीद कर दिया करें। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों। और इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें, इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें। कैसे करें, तरीक़ा समझ लें। असल में हर इबादत के लिए नेक होना ज़रूरी, हर इबादत के लिए नेक होना ज़रूरी। अल्लाह के महबूब से फरमाया, एक शख्स काबतुल्लाह का गिलाफ़ पकड़ कर, अब देखो काबतुल्लाह का जवाब यानी उसकी दीवार और उसके ऊपर गिरा पड़ा हुआ गिलाफ़ और पकड़ के दीवार से लग के खड़ा है, तो कितना बेहतरीन मकाम है, कितने रहमत के मकाम पे वो खड़ा है। اور الفاظ کیا ہیں؟ یا رب یا رب. جب بندہ یا رب کہتا ہے, اللہ کو یہ الفاظ بہت پسند ہیں, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے, اس کو پالنے والا کوئی ہے؟ اگر یہ جانتا ہے اس بات کو تو گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کی, گواہ رہنا میں نے اس کو یہ دیا. مثلاً تو اب کعبۃ اللہ جیسا مقام, غلاف جیسی دولت ہاتھ میں, اور زبان پر یا رب جیسے کلمات, لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا یستجاب الدعاء, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ طعام ہو حرام و شراب ہو حرام و لباس ہو حرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پہننا حرام, اس کا پینا حرام, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ معلوم ہوا دعا کی قبولیت کے لیے, دعا کی قبولیت کے لیے جی حلال ہونا ضروری ہے, کنڈیشن لگی ہوئی ہے. اور نماز کی قبولیت کے لیے آدمی کا نیک ہونا ضروری ہے, دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری ہے, ہر عبادت کے لیے نیک ہونا ضروری ہے, حج کے لیے نیک ہونا ضروری جی. لیکن قربان جائیں, میرے پیارے رب نے اپنے گنہگار بندوں کو محروم نہیں فرمایا, استغفار کے لیے گنہگار ہونا ضروری ہے, استغفار کے لیے گنہگار ہونا ضروری ہے. میں بچپن میں اپنے وطن میں سائیکل لے کر کسی گاؤں میں گیا, وہاں ایک بزرگ ملے, میں نے کہا بابا میرے لیے دعا کر دیجیے, اللہ میری مغفرت فرمائے, اللہ میرے حال کی, اللہ میرے حال کو اچھا کر دے. تو انہوں نے کہا ارے بیٹا تم ڈرتے کیوں, گھبراتے کیوں, اول تو تم بچے ہو اور اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو اللہ کی صفت مغفرت کس پہ ظاہر ہوگی, گنہگاری ہے تو گناہ جب ہوں گے تبھی تو مغفرت کی شان اللہ کی ظاہر ہوگی, گھبراتے کیوں, فرشتوں پہ تھوڑی مغفرت کی شان ظاہر ہوگی, فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں. پر واقعی اگر انسان نہ ہوتے تو صفت مغفرت ظاہر کہاں ہوتی اللہ کی, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رکھی کی رکھی رہ جاتی جی, وہ صفت ظاہر نہیں ہوتی. اور خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اگر بندے سارے کے سارے گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میں ایک دوسری مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی پھر میں اس کو معاف کروں گا. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو جی استغفار کرنے والے بندے پسند ہیں, استغفار کرنے والے بندے پسند. تو ہمیں گناہ کرنا نہیں ہے, لیکن اگر ہو جائے تو مایوس ہونا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ صفت مغفرت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ استغفار کرنے والے بنیں. اس کا اس دور کے اندر فائدہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں اچھی طرح سے. اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر لیا, ناراض کر لیا. ایک آدمی سے ہم نے کچھ پیسے لے رکھے, اس کو دے دی, اس کو ناراض کر دیا. کئی مرتبہ اس نے مانگے, کئی مرتبہ مانگے ہم نے دیے, کوئی نہ کوئی ماں کو جواب دیا, فون کیا فون نہیں اٹھایا, بند کر دیا. پھر سال دو سال کے بعد ملے اور کہ بھائی کیا حال ہے, السلام علیکم, آؤ نا ذرا گھر پہ کھانا کھا کے جاؤ, آپ شادی ہے. تو وہ آدمی کھانا کھانے نہیں آئے گا, وہ کہے گا دفع ہو. پہلے والا معاملہ تو صاف نہیں کر رہا اور بیچ میں آ کے ٹانگڑا کے کہہ رہے کہ چلو کھانے چلو, چلو کھانے چلو. ٹھیک اسی طرح استغفار کے ذریعے سے پہلے بندہ اپنا معاملہ اللہ سے صاف کرے, جب صاف کرے گا پھر رحمت بھی آئے گی, برکتیں بھی آئیں گی, خوشنودی بھی ملے گی, اللہ کی رضا بھی ملے گی, پھر سب کچھ ملے گا. لیکن پہلے فرسٹ اپنا معاملہ صاف کرے اللہ سے, اور وہ معاملہ صاف ہوتا ہے استغفار کے ذریعے سے, میرے پیارے رب معاف کر دیجیے. آج کے دور میں اکابر مشائخ کے دل کی یہ آواز ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت معافی مانگنے والی بن جائے. یہ جو اللہ روٹھے ہوئے ہیں, یہ جو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے, اور یہ جو گھوڑے گدھے مسلط ہو گئے ہیں جی اس دور کے اندر, اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پیارے رب سے سچے دل سے معافی مانگیں, اللہ کو راضی کرو. لہذا معافی کس طرح سے مانگیں اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک ہے استغفر اللہ, اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیجیے, اور ایک ہے نستغفر اللہ, اللہ میں بھی معافی چاہتا ہوں مجھے بھی معاف کر دیجیے, اور اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے یعنی پوری امت کو معاف کر دیجیے. تو اس میں معنی زیادہ ہے نستغفر اللہ میں, ایک ہے استغفر اللہ حمزہ سے الف سے, تو بجائے اس کے نون سے ہم کے نستغفر اللہ, نستغفر اللہ کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے اور پوری امت کو معاف کر دیجیے, اللہ میں پوری امت کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. تو کم از کم 300 مرتبہ, کم از کم 300 مرتبہ, اور زیادہ سے زیادہ 3000 مرتبہ دن میں پڑھ لے تو انشاءاللہ حالات بدلنے میں دوستو دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. ہر امتی کو چاہیے کہ وہ استغفار کرنے والا بنے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات, یا اللہ میری مغفرت, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میری مغفرت فرما دیجئے, وللمسلمین والمسلمات, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات, بس اتنا. تو جو شخص ایک مرتبہ یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر امتی کی طرف سے ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرے گا. اب کیا امتی اتنا ہی ہے جو یہاں بیٹھے ہیں خان خان میں؟ کوئی کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہے پوری دنیا میں حضور پاک کی امتی کتنے ہیں جی؟ اور مومن صرف وہی نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, بلکہ ہر نبی پر ایمان لانے والا مومن ہے. ہر نبی پر ایمان لانے والا مومن ہے. تو ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, چجائے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک جو امتی آئے ہیں وہ کتنے ہوں گے. دوستو ایک مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات آپ نے پڑھا, اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا مالدار بنا دیا کہ ہم گن بھی نہیں سکتے ان نیکیوں. تو جب ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنی ساری نیکی ملتی ہیں, اگر ہم اس جملے کو اپنا تکیہ کلام بنا لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات, تو دوستو کتنا بڑا بینیفٹ ہوگا, کتنا بڑا نفع ہوگا, کتنی اللہ کی رحمت برسے گی, کتنی ہم نعمتوں کے مستحق بنیں گے. تو اس کو معمول بنائیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ الفاظ شاید اس مجمع میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے چھوٹے بڑے میں سے کہ جس کو یہ الفاظ یاد نہ ہو, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. تو معلوم تو تھا نا پہلے سے, بس اس کو معمول میں ٹرانسفر کنورٹ کر دیں, اس معلوم کو معمول بنا لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں گے نا انشاءاللہ. ایک بات ہوگی. دوسری روایت, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 25 یا 27 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات, یہی جو بھی بتایا سیم یہی, اور پلس اس کے اوپر والمسلمین والمسلمات, یہ اللہ میری مغفرت فرما, مومن مردوں کے مومن عورتوں کی مغفرت فرما, اور مسلمان مردوں کے مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. گویا چار جملے ہوئے, مومن مرد مومن عورتیں دو, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, یہ چار ہو گئے. تو اس کی فضیلت معلوم, فضیلت یہ بتائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 25 یا 27 مرتبہ اس کو دن میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا کے قبول فرماتے. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہیں کیے جاتے, اللہ قبول فرما لیتے. اب مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کلمہ پڑھتے کے ساتھ ہی بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, اور اب اسلام کے جو احکام ہیں جب ان پر عمل کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, یہ مومن کہلاتا ہے. تو مومن جو ہے اپ گریڈ طبقہ ہے, جبکہ مسلمان جنرل طبقہ ہے. کلمہ پڑھنے والا, تصدیق قلبی کرنے والا وہ عام مومن مسلمان ہے, لیکن اعمال کے نور کو جمع کرنے والا اپنے دل میں وہ مومن کہلاتا ہے. تو جو بندہ 25 یا 27 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جتنا پڑھ لے, دوستو گھڑی میں دیکھ کر 3 سے 4 منٹ بھی نہیں لگتی, اتنی دیر میں یہ عمل ہو جاتا ہے. اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتے. اور بیہائنڈ بٹوین دی لائن ایک فائدہ اس کا اور معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرماتے, اس لیے کہ دعا تو اس کی قبول ہوتی ہے جو حلال کھاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بناتے ہیں تو گارنٹی طور پر اللہ تعالیٰ پہلے اس کو حلال کھانے والا بناتے ہیں, اس لیے کہ حرام کھانے والے کو مستجاب الدعوات نہیں بناتے, بلکہ جب اللہ پاک نے اس کو اپنا بنایا ایسا اور اس کو ایسی ڈگری دی کہ اس کی دعا قبول ہوگی, تو دعا قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ حلال کھانے والا ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ پڑھنے والے کے لیے اللہ ایسا انتظام فرمائیں گے کہ حلال مال ملتا ہو جائے گا اس کو. ہائے ہائے کتنی بڑی فضیلت ہے دوست. تو اگر ہم اپنے نفع کے لیے اتنا بھی نہ کریں تو دوستو دھرتی کے اوپر ہم تو پھر بوجھ ہیں, ہم تو اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں, پھر ہم اپنے نفع کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ دونوں باتیں یاد رہیں گی, عام طور پر اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات یہ پڑھنے والے بنے، اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یاد رہے گا دوستو. اور سنیں، حدیث پاک کے مفہوم ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے. کتنی عظیم فضیلت ہے دوستو، ہم شوق کے ساتھ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا کریں، شوق کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا اجر ملے. اتنا یاد رہے گا دوستو. پھر جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ہمارے یہاں حنفی مسلک ہے، اکثر فجر کی نماز اکثر اسفار میں ہوتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، اور عام طور پر اتنے ایسے لاسٹ ٹائم پہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نماز میں کوئی مسٹیک آ جائے خدا نہ خواستہ تو دوبارہ نماز لوٹائی جا سکے. کتنا وقت ہوتا ہے؟ 10-12-15 منٹ کا، ایسے ہی ہے نا. تو طلوع ہونے میں 10-12 منٹ ہوتی ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد 20-25 منٹ اور رکنا ہے آپ کو، 20 منٹ اتنا رک جائیں. تو جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، مراقبہ کرتا رہے، جو عمل بھی اللہ اس وقت توفیق دے کرتا رہے، اور سورج بلند ہونے پر، طلوع ہونے پر، اس کے بعد سورج تو طلوع ہو چکا پہلے ہی، اب 15-20 منٹ کے بعد دو رکعت پڑھ لے کم از کم اشراق کی نیت سے. اب جو شخص نماز پڑھ کے باہر نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرہ ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. 2-2.5-4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کر کے آئے، بال کٹوا کے آئے، کھجور زمزم کا تحفہ لے کر آئے، ساری دنیا میں حاجی کہلائے، لیکن اللہ کے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں شک ہے. لیکن جو بندہ یہ عمل کر کے مسجد سے باہر نکلے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو دوستو، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے حج عمرے کھو دیے، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے حج عمرے کھو دیے، ہم نے کبھی سوچا؟ تو ارادہ کرے دوستو. احمد آباد کے اندر ہمارے کچھ دوست احباب رہتے ہیں، بہت پہلے مجھے کسی نے خبر دی تھی کہ حضرت ایک محلہ ہے، کپڑے کی مارکیٹ ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا تو سارے کے سارے لوگ تلاوت میں مصروف. میں نے سوچا انا للہ و انا الیہ راجعون، آج دیر سے آنکھ کھلی ہیں اور فجر کی نماز بھی ہوگی، یہ تو سب تلاوت میں لگے ہیں. میں نے پوچھا بھائی جماعت کتنے بجے ہوتی؟ کیا جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی. اور ینگ نوجوان بچے دن میں کام کاج کرتے ہیں، رات کو تہجد میں مسجد ایسی کھچاکھچ بھری ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو شبہ ہوتا ہے اذان سے پہلے کہ فجر کی نماز نہیں ہو چکی. دوستو، ہم بھی تو ایسا ماحول بنا سکتے ہیں. دوستو دیکھو، جب بازار بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، عام طور پر دیکھیں بہت سی میلے لگتے ہیں، میلے، اور بہت سے بازار رکھتے ہیں، کہیں سنیچر بازار، کہیں سنڈے بازار، کہیں منڈے بازار، ایسے بازار لگتے ہیں. تو اس میں دور دراز سے سبزی فروش آتے ہیں، کپڑا فروش آتے ہیں، اور ضرورت کی اشیاء جو ہوتی ہیں ان کو بیچنے والے آ جاتے ہیں، بلک میں مال لے کر آتے ہیں، وہ سیل لگاتے ہیں، آواز کرتے ہیں. شام جیسے ہوتی ہے تو مارکیٹ میں تیزی بڑھ جاتی ہے، اور جتنے آنے والے بیچنے والے ہوتے ہیں بزنس مین، ان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے چلا اور مال ابھی بکا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاتے وقت تو بھاڑا دیا تھا، کرایہ دیا تھا، ایسا نہ ہو کہ واپس بھر کے لے کے جانا پڑے اس کو، تو بڑا نقصان ہوگا. لہٰذا وہ کوسٹ ٹو کوسٹ، قیمتی سے قیمتی چیز کوسٹ ٹو کوسٹ بیچ دیتے ہیں تاکہ واپسی کا بھاڑا دینا نہ پڑے. تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شام کو بازار بند ہونے کے جب وقت ہوتا ہے اسی وقت جاتے ہیں، تو اس وقت سستا ملتا ہے، اس وقت سستا مل جاتا ہے. میرے بھائیو، یہ کائنات کے بازار کے بند ہونے کا وقت ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے. تھوڑا سا عمل کریں گے، اللہ زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے ہم اپنے آپ کو عمل میں لگائیں، ہم اپنے آپ کو عمل میں لگائیں. اور اس وقت ایک عمل اور کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ ہم امت استغفار پر آ جائے، اور استغفار کے لیے میں نے ایک طریقہ بتایا کہ نستغفر اللہ، دوسرا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، تیسرا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ عمل بتایا. اس کے علاوہ دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں سے خوف نکالیں، ڈر کو نکالیں اپنے دلوں سے. امت بزدل ہو گئی، امت بزدل ہو گئی. کیوں بزدل ہو گئی؟ اللہ سے ڈر نکل گیا دل میں سے. جب اللہ سے ڈر نکلتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے، پھر کھڑکی ज़रा ज़ोर से बंद हो जाए तो डर लगता है, कि दिवाली का पटाखा भटक जाए तो डर लगता है, किसी टायर में भ्रष्ट हो जाए, पंचर हो जाए तो दिल फट जाता है जी। रात को पर्दा हिल जाए तो उससे डर लगता है, अंधेरों से डर लगता है, बिजली से डर लगता है। हालांकि ये सब जो रात भी हम दी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करती है बिजली, तो इससे क्या डरना। तो बिजली से डरते हैं, अंधेरों से डरते हैं, बादलों से डरते हैं, बारिश से डरते हैं, आंधी तूफान से डरते हैं, पर्दा हिल जाए तो उससे डरते हैं, अंधेरी रात में अगर हवा से पत्ता दरख्त गिर जाए तो पीछे कोई आ रहा है उससे डरते हैं। क्यों? एक अल्लाह का डर जब निकाल दिया, सारी मखलूक का डर दिल में बैठ गया। अब इस डर को कैसे निकालें? कभी कोई एक वजीर बयान करता है हम ऐसा कर देंगे निकाल देंगे, अरे कौन आए तुम निकालने वाले हमें यहां से? कागजों की बुनियाद पर शहरियत साबित करने का वक्त आया है। हाय हाय, क्या ये कागज नहीं बिकते? कागज बनाने वाले नहीं बिकते? इन कागजों की बुनियाद पर हम अपनी शहरियत साबित करेंगे, अपनी वतनियत साबित करेंगे? और कितनी बड़ी तोहीन कर रहे हैं हमारे उन सोल्जर और फौजियों की जो सरहदों पर खड़े हैं कि घुस पैठी, क्या मतलब उनके दो पैरों के बीच में से घुस के आ रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा, तो फिर उनको क्या खिलाया जा रहा है? ये बात मैं कह रहा हूं, डर तो नहीं लग रहा। खुदा की कसम कुछ नहीं होगा, करने वाली जात अल्लाह की, कोई डरने की जरूरत नहीं। शान के साथ रहो, एक अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में बिठाओ, इंसानों के साथ हुस्न सलूक करो, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वतन से मोहब्बत करो, कुरान पाक पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छे रहो, अच्छे अमाल करो, कुछ खराब करने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम इस धरती पर जितने दिन जिंदा रहेंगे शान के साथ रहेंगे। ला नखाफ इल्लल्लाह, हम किसी से डरते वरते नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला नखाफ इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से हम डरते नहीं है। डर और ईमान ये एक दिल में जमा हो ही नहीं सकते, डर और ईमान अल्लाह एक दिल में जमा हो ही नहीं सकते। लेकिन ये विल पावर आए कैसे, ये यकीन आए कैसे? कानपुर के अंदर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे, हुकूमत ने उस जमाने में कोई जालिमाना कानून पास किया, लोगों के लिए बड़ी तंगी आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो लोगों ने सोचा कि एहतजाज करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, एजुकेशन करते हैं, हमें ये कानून मंजूर नहीं है। हजरत ने फरमाया इससे कुछ नहीं होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। हजरत फरमाइए, कहा रोज़ाना 500 दफ़ा सच्चे दिल से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ो। क्या मतलब है साहब? नहीं है कोई ताकत नेक काम करवाने वाली और नहीं है कोई ताकत बुराई से बचाने वाली सिवाय अल्लाह की। या माहौरी तर्जुमा इसका यूँ कर सकते हैं, अच्छे बुरे कामों की ताकत अल्लाह के हाथ में, यानी अच्छे बुरे का अच्छा बुरा काम अल्लाह के कब्जे कुदरत में, किसी की बस की नहीं। कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकता, कोई हमें नफा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह की कुदरत के बगैर। अब जब ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया, 5 दिन नहीं गुजरे थे हुकूमत ने वो कानून वापस ले लिया। मैं खुद पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद अपने मुतालिकीन में इस अमल को जारी किया, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा नफ़ा है। इसलिए दोस्तों कम से कम 500 न सही, वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, लोगों के हजरत ज़माने में कुवा मजबूत थे, पुराना ज़माना था, ये मासियत का दौर है, कमर टूट चुकी है गुनाह कर करके, कमज़ोर है, कम से कम 300 दफ़ा तो पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिम और पढ़ के ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दोस्तों ऐसी विल पावर आएगी, ऐसी कुव्वत आएगी इंशाल्लाह, कभी किसी का खौफ दिल में आएगा नहीं। दोस्तों गुनाह को छोड़ें, गुनाह के करने से आदमी बुजदिल होता है, गुनाह करने वाला बंदा बुजदिल होता है, डरपोक होता है, ये पक्की बात है, गुनाह को छोड़ें। और गुनाह को छोड़ने के लिए गुनाह का एक आला है हम सब के पास, वह है फोन। इसको काबू में करें दोस्तों। कैसे काबू में करें, आज एक एक मसले को हल करते चलते हैं। दोस्तों मेरा एक तजुर्बा है, इस हज में मैंने जहरी दुआओं में भी, इज्तिमाई दुआओं में भी और तन्हाई की दुआओं में भी मौजू बना कर ये दुआ मांगी, प्यारे अल्लाह फ़ोन के फितने से बचा लीजिए, اللہ انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لیجیے، اللہ واٹس ایپ کے فتنے سے بچا لیجیے، اللہ سے خوب مانگا. اور پھر اللہ نے کچھ سمجھایا. دیکھو دوستو، جب سے یہ فون ایجاد ہوا، فون اللہ کی ایک نعمت ہے، فون اللہ کی ایک نعمت ہے. ہم سے پوچھو، ترکیسر فلاح دارن کے اندر پڑھتے تھے اور فون کرنا ہوتا تھا. زمانے تعلیم میں تو فون ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، خط لکھتے تھے تو دن گنتے تھے، آج پیر کا دن ہے، پیر کا آج چلا، منگل بدھ دو دن ڈاک پہ راستے رہا، جمعرات کو پہنچے گا، پھر ابو جمعرات کے دن جواب دیں گے، جمعرات کے دن چلے گا، جمعہ کو بھی چلے گا، اور جب ٹرین میں چلے گا تو شنیچر کے دن وہ چلتا رہے گا، اتوار کو چھٹی ہے، پیر کے دن پھر پہنچے گا. اور کئی مطلب حساب لگاتے اسی طرح سے ملتا تھا. یہ خطوں کا زمانہ تھا. میری والدہ امی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، تو میں ایک دستخط کیا کرتا تھا، اس میں پھول کی پتی جیسی بنتی تھی. پھر میں نے کچھ سالوں کے بعد وہ دستخط بدل دی، تو میرے ایک بھائی نے کہا کہ آپ نے دستخط بدل دی. میں نے کہا کہ ایسا مت کرو. کیوں؟ کہ اماں جب تمہارا خط آتا تھا تو دستخط دیکھ کر اس کو چومتی تھی، آنکھوں سے سر سے لگاتی تھی کہ میرے منے کا خط آیا، میرے منے کا خط آیا، کہ اسی کی دستخط. تو وہ دستخط سے پہچان جاتی تھی. اور پڑھی بھی تو تھی نہیں، پڑھنے کے لیے تو ہم شام کو جب آتے تھے کام کاج سے، دکان جو بھی کام کرتے کام کاج سے، جب واپس آتے ہم سے پڑھواتی تھی، تو ان کو تو بعد میں تسلی ہوتی تھی کہ تم نے اس میں لکھا کیا ہے، لیکن ان کی سینے کی ٹھنڈک اس دستخط میں مل جاتی تھی. اب تم نے دستخط بدل دی تو انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کس کا خط ہے. تو ایک زمانے میں خطوط یہ بھائی سے خیر ہوا کرتے تھے اور ٹھنڈک کا باعث ہوتے تھے. پھر جب ہم نے پڑھانا شروع کیا، یہ 1997-98 کی بات ہے، تو STD اور PUCO یہ سب آ گئے تھے. تو ترکیسر سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر کیم چار رستہ تھا، وہاں آئے. تو وہاں ٹرکوں میں بیٹھ کر پہنچتے تھے اور کئی مرتبہ کئی کئی گھنٹے فون کرتے تھے اور فون نہیں لگتا تھا، بڑا دل پہ شاپ گزرتا تھا، پھر بغیر فون کے واپس جاتے. پھر لینڈ لائن آئی، پھر گھر میں لینڈ لائن آ گئی، اس کے بعد پھر فون ایجاد ہوا. تو اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھو والدہ وہاں، اور نہ بیچ میں کوئی تار ہے نہ کچھ ہے، اور ایسی بات ہو رہی اتنی صاف کلیئر جیسے آمنے سامنے بیٹھے، خوشی ہوتی تھی. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی دوست. معاملہ کہاں سے بگڑا؟ جب سے یہ انٹرنیٹ کی بلا ہے، جب سے یہ دنیا گلوبل ولیج بنی، جب سے انٹرنیٹ کی دنیا آئی، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں دروازے بند کر کے وہ سارے گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہیں دور دور، لیکن وہ سارے گناہ کر رہے ہیں جو بغیر کسی فاصلے کے کیا جا سکتا ہے. مثلا مجھے نوجوان بچوں نے خود کہا، حضرت فون کے گناہ سے نہیں بچا جا رہا. مگر بھائی بتاؤ تو صرف فون کے گناہ کیا ہوتے ہیں، مجھے بتاؤ، میں پھر تمہیں اس کا علاج بتاؤں گا. تو نوجوان بچوں نے بتایا، جی کیا کریں، پہلے ہم لڑکی کو لکھتے ہیں جی محبت کی باتیں، اس کے جذبات بناتے ہیں، پھر خود بھی کپڑے اتار دیتے ہیں اور اس کے بھی اتار دیتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں. ہائے ہائے میرے بھائیوں، ہم اتنے گر چکے اخلاق سے، ہم اتنے اخلاق سے گر چکے، تنہائیوں کے ایسے گناہ ہم کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب ہر وقت فون جیب میں چالو ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، مطالعہ کر رہے ہیں. میں دوستو علماء، میرے نوجوان، میرے ہم اثر جو بیٹھے ہیں، برا نہ مانیں، آج میں لکھ کے دے سکتا ہوں، جو فون سامنے رکھ کے مطالعہ کرتے ہیں وہ ذمہ دارانہ مطالعہ نہیں کر سکتے. پڑھنا شروع کیا ایک فقرہ اوپر سے، ابھی پڑھ رہے تھے کہ ادھر رنگ آئی، رنگ نہیں آئی، میسج آیا، فوراً اس پہ ایک طرف رکھا، دیکھا، پھر کچھ مسکرائے، پھر ادھر سے کچھ بھیجا، پھر ادھر سے فوراً کچھ آیا، پھر ادھر سے کچھ بھیجا، اتنے میں دوسرے کا فون آ گیا، فوراً اٹھایا، کتاب سائڈ پہ رکھی، چل پڑے، پھر آگے کہیں نکل گئے. اور یہ کتاب انتظار ہی کر رہی ہے کہ 5 سطریں پڑھی تھی، آگے کب پڑھیں گے. یہ ذمہ دارانہ مطالعہ ہو. میں اگر ہاتھ اٹھواؤں تو اس مجمع کے اندر شرما جائیں گے لوگ. اگر پوچھوں ایک سال میں کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو شاید کتابیں تو دور کی بات ہے، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا گیا. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو کتابوں کا شوق رکھتے ہیں. کتابیں انتظار کر رہی ہیں، گھروں کے اندر لائبریریاں سڑ رہی ہیں، وہ طوفانوں میں انتظار کر رہی ہیں، کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ یہ شیطان جو موجود ہے، یہی اسی کے پڑھنے سے پہلے فرصت پائیں تب جا کے پڑھیں گے. ہر وقت کوئی نہ کوئی میسج. اور یہ جو گروپ بنے ہیں، ایسا لگتا ہے شیطان نے، ابلیس نے گروپ بنوا کے چھٹی لے لی ہے، اور گروپ والوں کو کہہ دیا شاباش، دیکھو کوئی نہ کوئی ایکٹیو رہے 24 گھنٹے، اگر وہ سو جائے تو وہ جاگے، وہ میسج بھیجے، وہ سو جائے تو وہ جاگے، وہ میسج بھیجے. हाय हाय क्या तमाशा है भाई, क्या तमाशा है। अच्छा अब जरा पीछे के जमाने में चलते हैं। अब से तकरीबन 25 साल पहले रात के 10 बजे अगर कोई ना जरा उनसे मिलकर आते हैं, यार घड़ी तो देखो 10 बजे हैं, इस वक्त तो आराम का वक्त है, सो गए सुबह मिलेंगे, हाँ बात सही चलो सो जाते, तो 10 बजे के बाद कोई आदमी किसी से मिलता था नहीं मिलता था, ये सोचता आराम का वक्त है। और अब 11 बजे यार उसको फ़ोन करो ना, यार सो गया, अरे जाग रहा होगा तो उठाएगा। अब तो हाल ये है कि दरवाज़ा खटखटा के नहीं आ रहे, अंदर चारपाई के पास आके यूँ झंझोड़ के उठा रहे हैं। फ़ोन करने का मतलब है कि झंझोड़ के उठा रहे, उठो हमारा फ़ोन सुनो। अच्छा लोग रात को दरवाज़ा क्यों बंद करते हैं दोस्त, क्यों बंद करते हैं? सिक्योरिटी के लिए ना, दरवाज़ा रात को इशा के बाद खाए पिया सो गए दरवाज़ा बंद करो, स्टॉपर लगाओ, कैमरा ऑन कर दो अगर सिक्योरिटी का निज़ाम है जी। क्यों बंद करते हैं? ताकि कोई दो पैर वाला ना घुस जाए, चार पैर वाले कोई जानवर ना आ जाए, किचन में बिल्ली ना चली जाए, कुत्ता ना आ जाए, इंसान ना जाए, चोर डाकू ना आ जाए, लुटेरा ना आ जाए, यही सब इन्हीं इम्कान की वजह से दरवाज़ा बंद करते हैं। अजीब बात, जिस दरवाजे से जिस्म और माल को नुकसान पहुंचाने वाले आ सकते हैं उन दरवाज़ों पे तो ताले लगा देते हैं, स्टॉपर लगा देते हैं, और जिस फोन की विंडो और दरवाजे के ज़रिए से ईमान और दिल को ख़राब किया जाता है उस पर कभी दरवाज़ा नहीं बंद करते, उसको कभी ऑफ नहीं करते। हाय अफसोस, बहुत बुरी बात है। इसलिए अब इसका एक हल निकालो। हल ये है 10 बजे के बाद डेटा उड़ा दो। क्या कहा मैंने? बेटा, बेटा नहीं डेटा, इंटरनेट का जो टावर है, इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसको उड़ा दो, यानी उसको ऑफ कर दो, फोन को ऑन रहने दो। दोस्तों मैं दिल की बहुत तड़पते हुए दिल से आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह करे मेरे ये प्यारे नौजवान, प्यारे जो अफराद यहाँ बैठे हुए हैं मेरी नज़रों के सामने, ये जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है सुन रहे हैं, अगर ये इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह मुझे भी अजर मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में भी कामयाबी कदम चूमेगी। आप इरादा करो, जो मैं कहता जा रहा हूँ उसको सुनते जाओ। 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे अपने डेटा बंद कर दो, फ़ोन को ऑन रहने दो, फ़ोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फ़ोन खुला है, फ़ोन ऑफ नहीं है। 10 बजे आपने डेटा उड़ा दिया, अब कोई मैसेज नहीं आ सकता, कोई ईमेल अब आपके फ़ोन में नहीं आ सकता, अब कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक पर कोई मैसेज नहीं आ सकता, ठीक। गोया आपने एक दरवाज़ा बंद कर दिया शर का, अब फोन का दरवाज़ा खुला है। अब सब के सब अहद कर लें कि 10 बजे के बाद हरगिज़ किसी को फ़ोन नहीं करना। अगर गर्दन पे छुरी आ जाए, कोई गोली मारने वाला आ जाए, यानी अपनी जान का माल का कोई नुकसान हो, उस मौके पे ही फ़ोन करें। यानी कोई इतनी इमरजेंसी अर्जेंसी आ जाए कि जिसमें सामने वाले का अगर फ़ोन ना करे तो सामने वाले के कोई नुकसान हो सकता है, ये इत्तला ना दे तो अपना कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसी इमरजेंसी में तो फ़ोन करें, वरना बिल्कुल फ़ोन ना करें। सोचें इंसानों के आराम का वक्त है, मैं भी आराम करता हूँ और दूसरों को भी आराम करने दूँ। फिर देखो दोस्तों कितनी मीठी नींद आती है। मीठी नींद दवाई खाने से नहीं आती, मीठी नींद आती है डेटा ऑफ करने से। डेटा ऑफ करने से मीठी नींद आती है, डेटा ऑन रहे और मीठी नींद आ जाए लिख के देता हूं कभी नहीं आ सकती। हल्लम है यूं हल्लम है, उठा उठा के देखता है, कभी इस विंडो में, कभी इस गली में, कभी उस गली में, जैसे भटकती रूह हो कोई, कभी इस गली में, कभी उस गली में, जैसे शहवत का किसी को जुनून तारी हो गया हो, सोचता हो कुछ भी मंजर देखने को मिल जाए, यहाँ कोई मिल जाए, यहाँ कोई मिल जाए, जैसे वो भटकता फिरता है। तो इसी तरह इसका इंटरनेट ऑन है, ये उसकी रूह गया भटक रही है, कभी व्हाट्सएप में और कभी फेसबुक पर और कभी यूट्यूब पर और कभी इधर और कभी उधर और कभी उधर, इसके रूह अंदर ही अंदर तड़पती रहती है, तड़पती रहती है। इसलिए डेटा ऑफ करें दोस्तों। अब आप रात को डेटा ऑन करके ये ना चेक करें कौन ऑफ है कौन ऑन है। अगर कोई आपको ऑन नजर आ रहा है तो हम इसके जजमेंट बना के दुनिया में पुलिस बना के नहीं भेजेंगे कि हम दूसरे को चेक करें, हम क्यों किसी के पीछे पड़े, क्या पता किसको क्या मजबूरी है, किस काम में क्या उसको सर्व करना पड़ रहा है। हम तो अपने नफ्स के, अपने दिल के जिम्मेदार, अपने 5 फीट के जिस्म की इस सल्तनत के जिम्मेदार जी, इसके मसूल हैं। अल्लाह पाक हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे, लिहाजा हाँ अपनी रूह को जी सुकून देने के लिए और अपने दिमाग को सुकून देने के लिए और अपने आमाल को महफूज रखने के लिए, ईमान को महफूज रखने के लिए ये काम करें कि 10:30 बजे डेटा ऑफ कर दें। फोन ऑन रखें, इमरजेंसी कॉल कोई आ सकता है उसकी रिंग भी कम कर दें, और 10 बजे के बाद किसी को फोन ना करें। हाँ कोई इमरजेंसी हो तो करें, नहीं है तो दिन में कर लें। नफ्स कहेगा अरे यार फलां को करना बहुत दिन हो गए, क्या होता है? तो आप फौरन आपका दिल कहेगा अरे किसी ने खानता में कहा था ना कि 10:30 बजे का फ़ोन ना करना, तो फिर तो कहा था वो, तो कोई थोड़ी देख रहे चलो कर लेते हैं। नफ्स के अंदर कश्मकश होगी, उस वक्त एक डायरी रखें, फौरन नाम लिख लें कि इनको इनसे बात करने को दिल कर रहा था, सुबह को करूँगा, अभी नहीं करता सुबह को करूँगा, समझ गए दोस्तों? ऐसा करें। अब और आगे सुने, कब इसको चालू करना है? सुबह को इशराक के बाद, 8 बजे के बाद। जब 8 बजे के बाद आप चालू करेंगे, ओहो व्हाट्सएप के ऊपर बारिश आएगी, मैसेज की बारिश आएगी, देर धनाधन वीडियो आएंगी और क्लिप आएंगी और पता नहीं क्या क्या आएंगे, स्माइली आएंगी, सब आएंगे, सबको मुस्कुरा के गुजार दें, बस जाओ। कहीं मैं नौकर हूँ तुम्हारा कि मैं तुम्हारे हर हेलो हाय के जवाब दूँ? अपने नफ्से बात करते उनको कहें कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, अनपेड नौकर हूँ, तुम्हारा बगैर तनख्वाह का नौकर हूँ, मैं तुम्हारे सबके सवालों के जवाब दूँ, इतनी सारी बातों का मैंने ठेका लिया है, इतने वक्त में मैं अगर एक मरतबा इस्तिग़फ़ार कहता, एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ता, इतने सारे मैसेज पढ़ने में जवाब देने में तो मेरे रब को ज़्यादा इस पर अजर मिलता, तुमसे बात करने में मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं सिवाय लायानी। कैसे कैसे गुरु, कैसे कैसे मैसेज, खुराफात आ रही है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है? इसलिए जो ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है उनके जवाब दे दें, बाकी छोड़ें। बहुत सी चीज़ें वीडियो बगैर डाउनलोड किए डिलीट कर दें, कोई ज़रूरी होगी तो कोई ना कोई आपको कहेगा, खबर कर देगा इंशाल्लाह। अगर कोई ज़रूरी चीज़ होगी तो ये चीज़ आई आपने देखी कि नहीं, क्या नहीं देखी आप दिखा दो, उस वक्त देख लीजिएगा, हालांकि आपके यहाँ आई थी आपने तो डिलीट कर दी। अरब के एक बहुत बड़े आलिम ने अपने घर का एक माहौल बनाया, हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहू दावा जहांगीर में हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा रखे। हज़रत ने इस साजिश को भेजा मैसेज, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको लिखकर अपने किचन में बनाया कि हम ये निज़ाम बनाते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि 15 मिनट कंटिन्यू, 15 मिनट इससे ज़्यादा कोई भी इंटरनेट को एक साथ सर्व ना करे, इस्तेमाल ना करे। व्हाट्सएप पर बैठना है सिर्फ 15 मिनट आप बैठ सकते हैं, 15 मिनट के बाद 3 घंटा सबके लिए इंटरनेट बंद करना लाजिम रहेगा। उन्होंने अपने घर का माहौल बनाया और देखा ही गया है दोस्तों, जब इंटरनेट बंद करके तिलावत करते हैं मज़ा आता है, तस्वीर पढ़ते हैं मज़ा आता है, मुराकबा करते हैं मज़ा आता है जी, मुताला करते हैं मज़ा आता है, कोई भी काम करते हैं बात करते हैं मज़ा आता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक मरतबा मैं आगरा के कुत्ताकुड़म के इलाके में गया, कुत्ताकुड़म एक इलाके का नाम है और केरला में है कुत्तीकुड़म जी, अब जो भी कुछ कह रहे हैं आप, बहरहाल उसका मेल है आंध्रा में और फीमेल है केरला में, उसी तरह का नाम हाँ है। तो वहाँ एक साहब ने, उस इलाके के आसपास का वाकया है, एक साहब जो इंडस्ट्रियल थे वो अपने यहाँ ले गया, कहा कि हज़रत मैं बहुत नुकसान में जा रहा हूँ और मोटे मोटे आंसू से रोया मैं, वो अकेले थे गाड़ी में जो ड्राइवर थे बाहर थे, मैंने कहा अच्छा हाथ उठाओ दुआ करते हैं, तो मैंने उनके लिए दुआ करनी शुरू की और अल्लाह ने कैफियत बनाई, आंखों से आंसू बहने शुरू हुए। उस अल्लाह के बंदे का फ़ोन आया और वो चालू दुआ में दुआ छोड़ के फ़ोन लेके हलो हलो करता बाहर निकल गया। आपको हंसी आ रही है और मुझे आज तक उसकी तकलीफ, आज तक तकलीफ। प्यारे अल्लाह मैंने एक बंदे के लिए हाथ उठाए, भीख मांगी आपके सामने और आपसे मुनाजात करनी शुरू की, उसका रब्ता बनाना शुरू किया और वो इतना बेनियाज निकला आपसे कि उसने मखलूक को अहमियत दी और खालिक को अहमियत नहीं दी। यही हाल दोस्तों हमारा है, हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, कुरान पाक को छोड़ते हैं और उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो उसको अहमियत देते हैं, खालिक को अहमियत नहीं दी, मखलूक को अहमियत दी। हाय हाय, वो रब अगर हलीम ना होता कब का हमें हलाक कर चुका होता। क्यों हमने फ़ोन ऑन करके उसकी तरफ नज़र क्यों की, हमने क्यों उसको देखा, क्यों उसको रिसीव किया? अल्लाह का कलाम अहम था या वो अहम था? अगर अल्लाह ताला ज़ुबान पर फालिश डाल दे और ज़िंदगी में कभी तिलावत ना कर सके तो ये आईन इंसाफ होगा अल्लाह का। इसलिए दोस्तों फ़ोन को ऑफ़ करके मुताला करें, फ़ोन को ऑफ़ करके यानी डेटा ऑफ़ करके जी मुताला करें, तिलावत करें और जिस वक्त आपको तिलावत करनी है, मुताला करना है, काम करना है, तो उसको वाइब्रेट पर कर दें, तो उसको साइलेंट पर कर दें, ताकि जिम्मेदारी के साथ आप कुछ जी सकें, कुछ कर सकें। वरना दोस्तों जो तरतीब बताई, अगर इस तरह हम करेंगे तो कुछ कर सकेंगे, वरना दोस्तों हमारे हलाक और बर्बाद होने में अब कोई कमी नहीं रही। तो अरब आलिम ने क्या कहा, 15 मिनट कंटिन्यू इस्तेमाल करने के बाद 3 घंटे के लिए ऑफ कर दें, फिर 15 मिनट के लिए ऑन करें और फिर 3 घंटे के लिए ऑफ कर दें। तो दिन में 3-4 मरतबा हो गया ऑन होगा इंटरनेट, वो भी 15-15 मिनट के लिए। इसमें हमारा काम हो जाएगा, इनफ है इतना वक्त हमारे लिए इंटरनेट पर सर्व करने के लिए। बाकी हमने कोई ठेका नहीं लिया है कि इंटरनेट हम 24 घंटे चालू रखें। समझ रहे हैं दोस्तों, ये मैंने कहा, अगर इस पर करके तो देखें, इंशाल्लाह दिल का सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। आजकल मैं अपने मरीजों में बड़ा बदनाम हूँ और अपने पीर भाइयों में बदनाम हूँ। यार आप तो फ़ोन नहीं उठाते। हमारे एक पीर भाई तो कहते हैं आपको फ़ोन करने के लिए पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़नी पड़ती है और फ़ोन लग जाए तो उसके बाद 2 रकात सलातुल शुक्र। मैं क्या पढ़ा करो, सवाब मिलेगा, मुझसे ज़्यादा अच्छी वो नमाज है, अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा। दोस्तों क्या तमाशा है, क्या हर वक्त हम ऑन ड्यूटी रहें, हर वक्त फ़ोन लोगों के सुनते रहें और हर वक्त हम बेइत्मीनानी की कैफियत में रहें, बेयकीनी की कैफियत में रहें? क्या हमने नौकरी ले ली है क्या पूरी दुनिया के लोगों की? क्या हम एक दूसरे के नौकर बन गए हैं कि हर वक्त जो है अपने फ़ोन ऑन रखें और अपने इंटरनेट ऑन रखें? नहीं दोस्तों, जैसे पहले ज़माने में जब ये मुसीबत नहीं थी जी, ये नेमत जो अफजामत बन गई जब नहीं थी, तब भी तो सुकून की मीठी ज़िंदगी गुजरती थी, तब भी तो मीठी नींद आया करती थी, तब भी तो कुरान पाक में बाहर आया करती थी पढ़ने में, तब भी तो मुताले में सुकून मिलता था और मुताला अन्नक्षु कल हजर हो जाया करता था जी। फिर उस हालात पर हम दोबारा क्यों ना लाएं अपनी तरफ, क्यों ना लाएं हम अपनी तरफ? दोस्तों इस हजमे में गया, अजीब बात, आखिरी रात थी, मैंने सोचा अल्लाह की याद में गुजार लें, सुबह को तो रुख्सत होना है। अब फजर की अजान में 15 मिनट बाकी, काबतुल्लाह से चंद मीटर के फासले पर बैठा हुआ हूँ। मैंने बाईं तरफ नज़र की, देखा एक शख्स कुर्सी पर बैठा है, उसके फ़ोन पर नज़र की, देखा गेम खेल रहा, गेम खेल के काबतुल्लाह से चंद मीटर के फासले पर टाइम पास कर रहा है। हाय हाय, जिस काबतुल्लाह को देखने के लिए, ज़ियारत के लिए लोगों ने अपनी रो रो के आँखें सफ़ेद कर डाली थी, अल्लाह काबा दिखा दीजिए, आज अल्लाह ने उसको दिखाया है तो वो गेम खेल रहा। मस्जिद नबवी के अंदर रमज़ान मुबारक में तरावी पढ़ रहे हैं, 4 रकात के बाद दुआ पढ़ रहे हैं, तरवी है ना, एक अरब है जो फ़ोन निकालता है, फटाफट व्हाट्सएप क्लियर करता है और कुछ भेजता है। इधर 4 रकात के बाद 5वीं रकात के लिए इमाम खड़ा भी हो गया और उसी में लगा हुआ, और जब रुकू की तैयारी फ़ौरन जल्दी हो, अल्लाह क्या खाक नमाज हुई, खालिक से ज़्यादा तो मखलूक में जुड़ा हुआ। और कोशिश करें दोस्तों, हम सब के साथ, मैं भी आप भी सब, कि रात को व्हाट्सएप के ऊपर अपने तन्हा कमरे में किसी औरत से बात ना करें, किसी औरत से बात ना करें। कोई पूछे हजरत आप कहाँ हैं, कोई पूछे भाईजान आप कहाँ हैं, कोई पूछे आप हैं कहाँ, आप क्या कर रहे हैं, कभी ना कहें कि मैं अकेला हूँ, इसलिए कि अब शैतान आ गया। जिस तरह से मैं समझता हूँ एक मर्द एक औरत के साथ, नामहरम के साथ तन्हा एक कमरे में रहेंगी तो तीसरा शैतान होता है बना है, इसी तरह तन्हा औरत और मर्द अगर आपस में बात करेंगे वो जरूर शैतानियत के ऊपर जाएगी। मेरे भाइयों, कोई भी दीन के अंदर कोई भी शोभा कोई भी हालत ऐसी नहीं है जो अनपॉसिबल हो, जो नामुमकिन हो, जो नामुमकिन हो उस पर अमल करना। अल्हम्दुलिल्लाह हल है ना, देखो इतने परेशानियों का हल निकला ना कुछ ना कुछ, भाई कुछ तो समझ में आया कि नहीं? अगर हम इस तरह से अपने फ़ोन को कंट्रोल करें और इसको अपने ज़ेरे इस्तेमाल रखें, ज़ेरे कंट्रोल रखें, नहीं है कि हम इसके ग़ुलाम बन जाएं और ये जैसा कहे वैसा चलें, ये जहां लेके जाए वहां जाएं, ये जिस तरह से हमें यूज़ करना चाहें वैसे, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये शैतान का आला है और हम इसके ग़ुलाम बन गए। हम इसको अपनी मुट्ठी में रखें, अपने काबू में रखें, हम इसके काबू में न जाएं। नमाज से पहले भी, नमाज के बाद भी, मजलिस से पहले भी, मस्जिद के बाद भी, स्टेज पे बैठे हुए और नमा खवास बैठे हुए हैं और वो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, सारी दुनिया देख रही है, इस सफाहत के भी खिलाफ है, ये वक़ार के भी खिलाफ है। नौजवान बच्चों के दिलों में शैतान डाल देता है, ये बड़े बड़े आलिम स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये भी तो फ़ोन में लगे हुए हैं, देखो ना कितनी देर से मुसलसल व्हाट्सएप भी चला। हालांकि उनसे कुछ मसला पूछा जा रहा है, वो मसले का जवाब दे रहे हैं, लेकिन शैतान ये नहीं सुझाता उनको, वो तो ये सुझाता हम भी इस्तेमाल करते वो भी करते, हम सेम सेम। इसलिए बहुत ज़्यादा सफाहत की और फकाहत की ज़रूरत है और अपने वक़ार को बाकी रखने की ज़रूरत है, वरना दोस्तों बदनाम होने में और बेवकार होने में अब कुछ कसर बाकी नहीं रही, कुछ कसर बाकी नहीं रही। नीज अपने घरों में वो अरब आलिम क्या कह रहे हैं आगे, एक निज़ाम ये बनाया कि रात को सोते वक्त, अनमैरिड बच्चे हैं, रात को सोते वक्त वो अपने फ़ोन अम्मी अब्बा के कमरे में जमा करा दें, इसलिए अब उनको इसकी ज़रूरत नहीं। रात को अपने कमरे में फ़ोन लेकर अनमैरिड बच्चे न लेते हैं, माँ बाप सो जाते हैं और बच्चे इंटरनेट पर खो जाते हैं और कहाँ जाते हैं, उनका जिस्म सिर्फ घर के अंदर है और वो गुनाहों के बाजार में घूमते फिरते हैं, फजर में नहीं उठ पाते, उनके कपड़े ख़राब हो चुके होते हैं, उन पर गुसल फर्ज हो चुका होता है, उनकी जवानी उन्होंने अपने हाथों से ज़ाय कर दी होती है। कहाँ चले गए चेहरों की बहारें, नौजवान बच्चों के चेहरों की बहारें कहाँ चले गई, अपने हाथों से अपनी जवानी ज़ाय कर बैठे, अपनी कमर तोड़ बैठे, एक घंटा बैठना मुश्किल, जिक्र मुराकबे में बैठना मुश्किल, तिलावत में बैठना मुश्किल, क्यों, कब्र दुखती है, क्यों दुखती है, इसलिए कि सब गिरिश ख़त्म कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हाथ जोड़ के आपसे खुशामदाना अंदाज से कहता हूँ, अल्लाह के लिए इस खिलौने के शिकारी न बने, इसको अंडर कंट्रोल रखें, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो, ये हमें न चलाए, हम इसको चलाएं, ये हमें बेवकूफ न बनाएं, हम इसकी बेवकूफ़ी से होशियार रहें, इसकी अय्यारी से होशियार रहें जी। ये शैतान है फ़ोन की शक्ल में, इंटरनेट की शक्ल में, जो हमें चला रहा है, भटका रहा है। तो ये बातें याद रहेंगी इंशाल्लाह, तो हम अपनी ज़िंदगी को अमल पर लाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, मालूमात को अब मामूलात में तब्दील करें, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात पढ़ेंगे ना, फिर अल्लाहुम्मा ग़फिर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात 25 या 27 दफ़ा पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। फजर की नमाज के बाद बैठे रहेंगे मुसल्ले पर, मुराकबा है तो मुराकबा करेंगे, जिक्र जहरी है तो जिक्र जहरी करेंगे, तिलावत तो तिलावत करेंगे, नहीं उठेंगे, दिल पे बड़े पत्थर आएंगे, अरे चलो ना, अरे नहीं जाना, अरे चलो ना नाश्ता करा, नहीं करना, आधे घंटे के बाद करेंगे, दिन भर तो करना ही है, दिन भर तो काम करना ही है, मेरे अल्लाह के दरबार में इतनी देर भी नहीं तो बैठ सकता, अपने नफ्स को डांटें, बिठाएं उसको, दो तीन दिन बिठाएंगे, उसके बाद जब आप फजर की नमाज के बाद वो तिलावत करके, कुछ जिक्र करके, कुछ ज़खीरा जमा करके जब उठ के चलोगे, तो आप नेकियों के एतबार से मालदार होंगे, और जब आप निकलोगे जी, प्यारा सूरज आपका इस्तकबाल करेगा, उस दिन की सुबह कुछ अजीब व गरीब सुहानी सुबह लगेगी आप, उस दिन की बरकतें कुछ अजीब लगेंगी आप, सुबह ही सुबह कलियां चहकती हैं, चिड़ियां चहकती हैं, कलियां चटकती हैं, फूल खिलते हैं, और भीनी भीनी ओस पड़ी होती है, और अल्लाह ताला की रहमत और एक ख़ास नूर कायनात में बरसा होता है, अल्लाह ताला के रिस्क बरस रहा होता है, लेकिन हाय अफसोस, ये अशरफुल मखलूक सो रहा होता है, रब करीम सदा लगा रहा है और देने के लिए तैयार है, और हम सो रहे हैं। हम तो माइल वकरम है, कोई साइल नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रब मंजिल में, मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, दरवाजे तेरी रहमत के हर सिमत खुले पाए, आती थी सदा पे हम जो मांगने वाला हो, हाथ अपने अकीदत से आगे मेरे फैलाए। तो दोस्तों, सुस्ती की चादर को उतार कर फेंको जी, हो सके तो आज जाकर गुसल करो और दो रकात नमाज सलात तौबा पढ़ो और कहो प्यारे अल्लाह, जाहिरी जिस्म को भी धो लिया, धुले में साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई, मेरे प्यारे रब आज मैं बातिन का गुसल करने आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह आज मुझे माफ़ कर दीजिए, और बातिन का सच्चा गुसल करके आने वाली सुबह कल से आप उस तरह से जिंदगी गुजारे जैसे मैंने आपको बताया है। कल 29 तारीख है, 29वां पारा कल पढ़ लें, कुरान पाक की तिलावत शुरू करें, कल 29वां पारा पढ़ लें, और अगर चांद हो गया तो रात को ईशा के बाद 30वां पारा, ये तो छोटी छोटी सूरतों पर मुश्तमिल है, इंजॉय करते करते आप पढ़ लेंगे, गोया आपका कुरान पाक परसों पूरा हो गया, यह कल रात को पूरा हो गया जी, और इस्लामी महीने की रबीउल अव्वल की पहली तारीख और पहला पारा, दूसरी तारीख दूसरा पारा, तीसरी तारीख तीसरा पारा, महीने की तारीखें भी याद रहेंगी इस्लामी, और पारा भी याद रहेगा, और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। अगर घर के हर फर्द इस तरह से कुरान पाक पढ़ें, तो हर घर में दोस्तों चार चार पाँच पाँच अफराद हैं, और इतने सारे अफराद और इतने सारे अफराद घर के चार पांच फर्द का एक फर्द है तो दोस्तों कितने हजार कुरान पाक हर महीने पूरे होंगे और कितनी रहमतें अल्लाह ताला के नुज़ूल करेंगे दुनिया में। दोस्तों अमल पर जिंदगी गुजारे नहीं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 मरतबा रोजाना पढ़े और नस्तग़फिरुल्लाह नस्तग़फिरुल्लाह नस्तग़फिरुल्लाह। ये दोस्तों हल्के फुल्के मामूलात हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को जी कदम चूम कर देखना चाहते हैं, हम अपने ईमान को और अपने दिल को और फिजिकल बॉडी को और अपनी रूहानी बॉडी को मजबूत करना चाहते हैं, कवी करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो कहा है, जो मालूम हुआ है, उसको मामूल में तब्दील कर लें, इंशाल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। वरना दोस्तों हम वो मुर्दा हैं जो ज़मीन पर चलते फिर रहे हैं, हम वो मुर्दा कौन है जो ज़मीन पर चलते फिर रहे। और एक बात हुक्काम के हवाले से, जो दिल्ली में बैठे हुए नर्दनी है, कौम ने आपको वोट देकर राय देकर, यह अलग बात है, हमने दिया नहीं दिया अलग बात, हर चीज राज में होती है, मैंने दिया नहीं दिया तुम्हें क्या पता, लेकिन तुम्हें तो यह मानना चाहिए हमने सबने दिया। जब भी तो कहते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में लफ्ज, क्या वो सबके वजह से हम आए, क्या बोलते हैं हिंदी का खास लफ्ज है वो जी, कह दो कि हम तो हिंदी बोलते ही नहीं, हम तो तमिल हैं, ये भी तो समाजा चल रहा है। तो जब ये कह रहे हैं कि सब ने हमें चुना है, जब सब ने चुना है तो सबको मोहब्बत की नजर से देखते क्यों नहीं, करोड़ों मुसलमानों को क्या कह रहे हो तुम होते कौन इस बारे में कहने वाले, क्या हमें मच्छर मक्खी समझा। इस मुल्क के बनाने में हमारी बुनियादी खून दाखिल है, इसी में पैदा हुए, इसी में मर के मिना खलकना को वफीहा नुईदुकुम मिना नुखरिजुकुम तारा फरा, हम यहीं पैदा हुए और इसी वतन की मिट्टी को ओढ़ के सो जाएंगे, हम यहीं से उठेंगे। याद रखें, जो हाकिम हमें डराए वो हमारा दुश्मन हो सकता है, दोस्त कभी नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। जो हाकिम हमें डराए वो दोस्त और हमारा खैरखा कभी नहीं हो सकता, तो फिर सबका विकास और तरक्की कभी नहीं हो सकती, झूठे हैं। डराने की बात करें तुम, क्या तुम्हें बड़ा बना के इसलिए भेजा कि खिदमत करो, ये कांटों का ताज मुबारक हो तुम्हें, हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमने तो बड़े मजे लिए हैं, कौम की खिदमत करके थक चुके, अब तुम्हें मौका दिया है अल्लाह ने जी, या तो हमारी शूमिया अमाल है, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है तो काम करो ना भाई, किसने मना किया, काम करो, खाओ भी पियो भी मजे करो, उड़ो दुनिया में घूमते फिरो, लेकिन काम करो जो करने के, डराने के काम मत करो, कोई डरने वाला नहीं है, हम भी अनाज खाते हैं, हम भी पानी पीते हैं, हम ही इसी धरती पर जीते हैं जिस पर तुम जीते हो, इसलिए खौफ बिल्कुल खाने की जरूरत नहीं है दोस्त, एक अल्लाह से जुड़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, ना कोई हाकिम बड़ा, ना हुकूमत बड़ी, ना फौज बड़ी, ना और कोई चीज़ बड़ी, ना कोई और चीज़ बड़ी, ना मुल्क बड़े, ना ये इलाके बड़े, ना अमरीका बड़ा, ना यूरोप बड़ा, ना अफ्रीका बड़ा, ना एशिया बड़ा, बड़ा है तो कौन है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मोहब्बतों के साथ, नफ़रतों के साथ नहीं। हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने हमें क्या सिखाया, गिरतों को उठाओ, भटकों को रास्ता दिखाओ, कमज़ोरों के साथ युद्ध बनो। महबूब शासन ने क्या फरमाया, उनसर अहा का ज़ालिमन और मजलूमन और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, अपने भाई की मदद करो, ज़ालिम है तो भी उसकी मदद करो, अगर मजलूम है तो भी उसकी मदद करो। क्या मतलब, मजलूम है समझ में आया, उसको जुल्म से बचा लिया, उसकी मदद की, लेकिन ज़ालिम की मदद करने के लिए कहा है, वो अगर मार रहा है तो उसको डंडे दे, वो अगर मार रहा है तो उसको छुरे दे कि मारो, ज़ालिम की मदद क्या है। हाँ, ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिकमत वाला कलाम ही है, महबूब ने फरमाया अपने भाई की ज़ालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी, ज़ालिम की मदद इस तरह कि उसका हाथ पकड़ लो, जुल्म से रोक दो, जुल्म से रोक कर उसकी मदद करो। अरे मियां क्या कर रहे हो तुम, क्या हो गया तुमको, अपने भाई का हाथ उठा रहे हो, उसका गला काट रहे हो, गला दबा रहे हो, तुम्हें हो क्या है, तो ज़ालिम का हाथ मरोड़ दो, ज़ालिम के पंजा पीछे को धकेल दो, ज़ालिम को पीछे गिरा दो, उसकी मदद है, और मजलूम को उठा लो, सीने से लगा लो, ये उसकी मदद है। ये अल्लाह के महबूब वसल्लम का दीन ही ऐसी रहबरी कर सकता है, और कोई रहबरी नहीं कर सकता। हमें फिरकों में बांटा जा रहा है, हमें मजहबों में बांटा जा रहा है, फला मजहब वाला, फला मजहब वाला, फला मजहब वाला जी, जुबान पे फालिस पड़ गया, मुसलमान कहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, तसव्वुफ और सुलूक सिर्फ इसका नाम नहीं है गर्दन झुका के बैठ गए और बैठे हुए हैं। अल्लाह को ऐसी तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह का ऐसा जिक्र बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में लाले पड़े हों, घर में इज्जतों के लाले पड़े हों जी, घर में तहजीब के लाले पड़े हों और हम बैठे हैं तस्वीर पढ़ने, बेहतरीन मोमिन बने। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसल्लों पर नहीं बिठाया, हमें सिर्फ मुसल्लों की इबादत नहीं दी, हमें मुसल्लों की इबादत नहीं दी। हम घर में हों तो बेहतरीन बाप हों, बेहतरीन शौहर हों, बेहतरीन भाई हों, बेहतरीन ताया और चाचा हों। हम घर के बाहर हों तो बेहतरीन मुहिब वतन शहरी हों, बेहतरीन मुहिब वतन शहरी हों, अपने वतन के वफादार हों, अपने वतन के अफराद से मोहब्बत करने वाले हों, हर इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हों, मानवता से मोहब्बत करने वाले हों, अपने वतन की सरहदों से मोहब्बत करने वाले हों, अपने वतन के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करने वाले हों, अपने वतन के निज़ाम से मोहब्बत करने वाले हों और निज़ाम को अच्छा से अच्छा बनाने की फिक्रें करने वाले हों। हम बाहर हों तो ऐसे हों, हम मस्जिद में हों तो हम मुसल्ले के शहसवार हों, मुसल्ले पे बेहतरीन खड़े होने वाले हों जी। हम जब काम करने वाले हों तो हम बेहतरीन मजदूर हों, बेहतरीन मेहनत करने वाले, हलाल कमाई को हलाल तरीके से करने वाले, जफाकशी करने वाले हों, एक बेहतरीन कमाने वाला इंसान हों। हम काम चोरी ना करें, हम जो है हम डंडी ना मारें, हम अमानत में खयानत ना करें, हम वक्त को ज़ाया ना करें, हम फ़ोन में अपने वक्त को ज़ाया ना करें। एक जिम्मेदार मोमिन बनकर ज़िंदगी गुजारें, ये है तसव्वुफ, ये है सुलूक, ये है खानकाह की तालीम। हम बेहतरीन शहरी बने, बेहतरीन इंसान बने, बेहतरीन जौहर और फर्द बनकर ज़िंदगी गुजारें, यह है दोस्तों तसव्वुफ, ये है सुलूक और यह है खानकाह की तालीम। इसलिए दोस्तों अल्लाह के वफादार बने, अल्लाह के वफादार बने, हराम खाने से बचें, हराम पीने से बचें, हुकूक अदा करने वाले बने, जिस वक्त जो काम अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं उस काम को करने वाले बने, आसान तरीके से करने वाले बने, अपने बच्चों की फिक्र करें। यतीम वही नहीं है जिस बच्चे के माँ बाप मर जाएं, आज के ज़माने में यतीम बच्चा वो भी है जिसके माँ बाप जिंदा हों और माँ बाप को इतनी फुर्सत ना हो कि बच्चे की तरबियत करें। अपने अपने कमरों में व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, एक बिस्तर पर हलाल बीवी दिल बहलाने वाली मौजूद, हलाल शोहर मौजूद, शोहर अपने फ़ोन में वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर वो भी किसी के साथ जुड़ी हुई है, ये कहाँ की ज़िंदगी है, इसको किसने मियाँ बीवी का। हलाल छोड़कर हराम में लगे हैं, इसलिए फ़ोन को औरतें शौकन समझें, अपने फ़ोन को भी और शोहर के फ़ोन को, और रात को दोस्तों इस तरह से अपने घर का निज़ाम बनाएं तो इंशाल्लाह हम इस तारीकी के दौर में भी अपनी रात और दिन को जगमगा देंगे इंशाल्लाह आमाल के नूर से। तो करेंगे ना दोस्तों, कोई बात बुरी तो नहीं लगी, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह ताला इस इलाके को सदाबहार रखे, मुझे आप लोगों से अल्लाह वास्ते की मोहब्बत है, अल्लाह के लिए मुझे मोहब्बत, पूरे साउथ के इलाके से अल्लाह वास्ते मुझे मोहब्बत है। हुजूर पाक की उम्मती बड़ी वक़ार की, सुकून की, शान की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह से अल्लाह पाक ने आपको जाहिर में करोड़ों इंसानों से अच्छा बनाया, शिमाल की तरफ लोगों के लिए इस वक्त हलाल रोजी कमाना मुश्किल हुआ है। मत पूछो दोस्तों क्या हालत, अल्लाह ने करोड़ों इंसानों से आपको बेहतर बनाया है। जो लेबर हैं उनको जहाँ वो अपनी ज़ात के लिए हलाल रोजी में इजाफा मांग रहे हैं, वहाँ अपने मालिकों के लिए भी हलाल रोजी में इजाफा मांगे, उनकी रोजी में इजाफा होगा तभी तो उनके जरिए से आप तक पहुँचेगी। और अमानतदारी से काम करें। एक बादशाह ने एक तालाब बनाया, उसके दिल में यह ख्याल आया कि मैं अपनी तारीख में एक ऐसा तालाब बनाना चाहता हूँ जो दूध से भरा हो, चाहे एक दिन के लिए सही लोग फिर लेके जाएं, लेकिन मेरे हिस्ट्री में लिखा जाए कि मैंने एक दूध से भरा हुआ तालाब बनाया। तो सारे रियाया को बुलाया और कहा कि भाई मैंने तालाब तो बना दिया है साफ सुथरा शफाफ, अब आपका काम है इसको दूध से भर दो। कहा कि बादशाह सलामत, हम ये काम करेंगे। सब गए खुशी खुशी, सब ने दूध का इरादा किया। रात के वक्त, रात की तारीकी में एक शख्स के दिल में ये ख्याल आया, यार सब तो दूध डालेंगे, अगर मैं पानी ही डाल दूँ तो क्या हरज है, पता भी नहीं चलेगा। चुनाचे सुबह जब हुई और बादशाह तालाब के किनारे पहुँचा, देखा पूरा तालाब पानी से छल उछल भरा हुआ, हैरान हुआ वो। फिर तहरीक की कि भाई सच बताओ, सच बताओ तुमने पानी क्यों डाला। सबने ये कहा कि मेरे दिल में ये इरादा, ये बात पैदा हुई कि सब तो दूध डालेंगे, मैं अगर पानी डालूं तो, हर एक ने ये कहा। तो जो उसका मुजरिम था उसने कहा कि असल मुजरिम मैं, मेरे दिल में पहले एक खोट आया था और इस दिल का साया सब पर पड़ा। और आज के दौर में दोस्तों ये सब चीज़ें समझना, नियतों का असर कैसे पड़ता है, कोई मुश्किल नहीं है। एक आदमी ब्लूटूथ ऑन करे और एक मैसेज भेजे, जिनके ऑन है सब में चला जाएगा, सब में चला जाएगा, है कि नहीं। एक आदमी ग्रुप बनाता है, ग्रुप में एक आदमी नियत करके एक मैसेज भेजता है, सब में पहुंच जाता है कि नहीं। तो नियतों का समझना और वो कैसे इफेक्ट डालती है दूसरों पर, इसका समझना कोई मुश्किल नहीं है। साइंस की इजादात ने हमें हमको समझना आसान कर दिया। इसलिए हम नियतों को साफ रखें, नियतों को पाक रखें। आज हमारा हाल ये है दोस्तों, एक तो ये है कि कोई भी आदमी खुशफहमी में मुबतला ना हो, कोई आदमी किसी से खुशफहमी में मुबतला ना हो। आज सामने बैठा है, कल पीछे बैठेगा। आज खुशफहमी में जी, आज तारीफ कर रहा है, कल बुराई करेगा। इसलिए एक साहबी ने कहा था, बतत्तों की सलास, ये दुनिया मैंने तुझे 3 तलाक दी जी, ये दुनिया तो धोखेबाज है, तो दगाबाज है, तेरी चमक दमक मुझे कभी बहका नहीं सकती, मैं तुझे 3 तलाक देता हूँ। ये धोखे का घर, ये मकड़ी का जाला और मच्छर का पर है, इस दुनिया से कभी आप जो धोखे बना रहे। शहवत, हम लोग समझते हैं शहवत नाम है मर्द और औरत का जिनसी ख्वाहिशात में मजनू हो जाना, जिनकी ख्वाहिशात में डूब जाना, इसका नाम शहवत नहीं है। शहवत इसी का नाम नहीं है, ये भी शहवत है, लेकिन शहवत और भी है। मतलब मैंने बयान किया तो लोगों से पूछो कैसी रही बात, कैसा रहा। मैं कह रही हजरत आज तो ऐसी ऐसी बात हुई, बहुत मज़ा आ गया, अब मैं खुश हो रहा, ये मेरी शहवत, ये शहवत, शहवत ये भी किस्म। औरत ने अच्छा खाना बनाया और वो किसी पूछ रही, अरे इतना सब अच्छा खाना बनाया, किसी ने कहा कि अच्छा लगा कि नहीं, अरे अरे वाह वाह इतना शानदार खाना, तो कहा कुछ कहो तो सही, मुझे पता तो चले। ये उसकी शहवत है, यानी अल्लाह को छोड़कर अपनी तारीफें पसंद करना, ये गोया खुद पसंदी है, ये बुत परस्ती। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखो, न किसी से बुराई की उम्मीद, न किसी से अच्छाई की उम्मीद, बस एक जैसे रहो, नॉर्मल रहो और नियत अल्लाह की जात के साथ जोड़ के रहो जी। क्या अच्छा बुरा, सबको अच्छा समझो, बुरा किसी को मत समझो, सबको अच्छा समझो, सब मुझसे अच्छे हैं, सब मुझसे अच्छे हैं। अगर किसी का गुनाह खुल भी जाए तो सोच लें बस इसके अंदर यही तो गुनाह है जो मैंने देखा, बाकी तो ये अल्लाह का भली हो सकता है, और इसको भी तौबा कर लें तो पता नहीं कितना ऊँचा मकाम इसको मिल जाए, बाकी मैं जो कुछ हूँ वो तो मैं कुछ जानता हूँ, समझे। ये कैफियत अपने अंदर पैदा करें तो पैदा करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ हजरात पहले भी मुझे रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि हम तौबा करना चाहते हैं। मैंने कहा मुफ्ती शकील साहब दामदर खातून की खानका में हम पहुँच रहे हैं, अगर इस आजिज़ी से बैत होना है तो मैं कलमात पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। देखो माशाल्लाह हजरत मुफ्ती साहब आप लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, माहाना मजलिस होती है, आप उसमें बराबर शिरकत करें और अपनी ज़ात को बनाने, अपने अंदर सिफात पैदा करने की कोशिश करें, और हर मजलिस में इस नीयत से आएँ कि प्यारे अल्लाह आज ऐसी बात कहलवा दीजिए जो हमें नफ़े, हमें अमल पर खड़ा कर दे। कैफियत बनाने के ना आएगा, कैफियत तो आर्जी चीज़ है दोस्तों, इसकी फिक्र ना करें, ये अल्लाह अमल पे खड़ा कर दीजिए। जब आप इस नियत से आएंगे तो अल्लाह ताला इधर दिल में डालेंगे, जब सामने वाला नियत करता है तो सामने वाले मजमे में कोई ऐसा बाकमाल होता है, उसकी नियत का असर पड़ता है, उससे अल्लाह मजमून खोलते हैं। वरना कई इलाकों में हम ऐसे गए कि वहाँ इतनी एनर्जी सर्व करनी पड़ती है बोलने में, इसलिए कि सारे बुत बने, पत्थर बने बैठे होते हैं, उनके दिल में कोई इरादा होता ही नहीं, तो वहाँ बहुत जोर लगाना पड़ता है। वहाँ जैसे एक्सीलेटर दबाकर पहाड़ पर चढ़ना होता है तो न जाने कितने गैलन डीजल और पेट्रोल जलता है, इसी तरह हमारी रूहानियत का हाल होता है। इसलिए अच्छे अच्छे नियतें करके बैठें तो अल्लाह ताला दिल खोलते हैं, अल्लाह रहमत, क्योंकि उनकी तलब पर हिजा निकलती है, तो हर मरतबा ये नियत करके आए और फ़ायदा उठाएं। एक बात, दूसरी बात दोस्तों, कई मरतबा ये देखा गया कि आदमी किसी से बैत हुआ और बैत होने के बाद कोई दूसरा शेख आया, मैं तो ओहो ये तो यार हमारे शेख से भी बहुत अच्छे, चलो इनसे बैत हो जाते हैं। फिर उनके बाद कोई तीसरा आया, ओह ये तो उनसे भी अच्छा, चलो इनसे बैत हो जाते हैं। इस तरह से बदलना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है। मेरे पास एक नौजवान आया और आकर कहने लगा, हजरत मैं अपने शेख से इजाज़त लेकर आया हूँ, मैं उनकी खिदमत में रहता हूँ बहुत साल से और उनको मुझ पर बड़ा एतमाद है, मैं उनका मोतमद हूँ, मैंने उनसे इजाज़त ले ली है आपका नाम लेकर, मैं आपसे अपना इस्लाही ताल्लुक कायम करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा हाय हाय तूने ये कितना बुरा काम किया, कितना बुरा किया, ये बताओ तुम्हारे दिल के अंदर जो ये बात पैदा हुई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे यहाँ रहकर कुछ नफ़ा नहीं हो रहा, ये जो बात पैदा हुई ये वहाँ रहकर ही तो हुई ना, क्या यही तो नफ़ा है, यही तो नफ़ा है कि आपके दिल के अंदर पैदा यह हुआ कि मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, हाय मुझे कुछ भी नहीं मिला। अरे ये दर्द नायाफ्त यही तो याफ्त है, तू इसको समझा क्यों नहीं, इसको समझा क्यों नहीं। दोस्तों अपने शेख को छोड़कर दूसरे के पास जाना और सिर्फ मामूली सी बात को वजह बना लेना, ये मैं ऐसे ही समझता हूँ जैसे कोई अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे के पास जाए, अच्छे कपड़े देखकर, अच्छे जूते देखकर, अच्छी घड़ी देखकर, अच्छी शक्ल देखकर कहे अंकल कल से मैं आपको डैडी कहूँगा, कल से मैं आपको अब्बू कहूँगा, इसलिए कि बस मुझे आप ही अच्छे लगते हैं, आप ही मेरे अब्बू से अच्छे हैं, आप मेरा। दोस्तों कितनी बड़ी बेहरमती की बात है, बाप की कितनी बड़ी तोहीन की बात है। इसलिए अपने शेख से बैत होने के बाद उसी के कदमों में पड़े रहें। हाँ अगर किसी से मोहब्बत है, पीर भाई से किसी से मोहब्बत है, तो उनको चचा ताया के दर्जे दे के उनसे कोई बात पूछ नहीं जाते, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन छोड़ने की और शेख बदलने की कोशिश ना करें, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे पास तो जो आते हैं भाई आने वाला मुरीद किसको अच्छा नहीं लगता, मेरे स्कोर बढ़ रहे हैं, मेरे मुरीद बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं हम इसको नहीं, इसको हर किसी इस पर नज़र ना हो। मुरीद तो सबसे ज़्यादा शैतान के हैं, तो ज़्यादा मुरीद होना ये कामयाबी की अलामत थोड़े ही है। अरे तरबियत करना, लेके चलना, बात समझाना, ये है असल चीज़। तो बहरहाल इस तरह से दल बदल मत करो, आज बीजेपी में कल कांग्रेस में परसों किसी और में, ऐसी ये दल बदल हरगिज नहीं करना चाहिए, समझे। यकीर और महकम गिर, एक को पकड़ो मजबूती से पकड़ो। और जब भी किसी शेख की मजलिस में जाओ, मसलन मुफ्ती शकील साहब के न जाने कितने मुतालिकीन मुरीदीन यहाँ बैठे हैं और अक्सर वही हैं, अब इस आजिज की बात से नफ़ा हुआ तो आपके दिल में क्या कैफियत होनी चाहिए, ओहो ये मेरे शेख की बरकत है जो आज मुझे ये बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, अगर उन्होंने मेरी तरबियत न की होती तो इस मजलिस में बैठकर ये कैफियत मुझे न मिलती। जब भी कहीं और जगह जाओ फौरन को वाह वाह शाबाश मेरे शेख साहब, अब मेरे शेख की दुआओं की बरकत है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं इनके बयान में आकर बैठा और मुझे यहाँ से नफ़ा मिला, इसका असल सबब तो मेरे शेख, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, उनकी दुआओं की तौफीक की वजह से यहाँ तक पहुँचा, उनके जिक्र की तौफीक की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, तो ये जो मुझे इनसे नफ़ा हुआ ये बिलवास्ता मेरे शेख से नफ़ा पहुँचा, ये कैफियत होनी चाहिए दोस्तों। और जो इस कैफियत के साथ रहता है वो है अपने शेख का असल, वरना दोस्तों ये दल बदल वाले तो बहुत मुरीद मिलते हैं, अल्लाह बचाए ये बदनामी के सबब बनते हैं। ये सबक याद रहेगा दोस्तों, अल्लाह मर की तौफीक दे। मैं तौबा के कलमात पढ़ाता हूँ, पीछे पीछे पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन عبده و رسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ کا شکر یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ معمولات کے بارے میں اتنی بات سمجھ لیں، جو اس وقت اس عاجز سے بیعت ہوئے ہیں، اس وقت اس عاجز سے بیعت ہوئے ہیں، شیخ کی حیثیت ایک طبیب کی ہوتی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کن حالات میں کس وقت میں کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اور مرید جب رابطے میں رہتا ہے اور اپنی کیفیات کو بتاتا ہے پھر ذکر اذکار میں معاملات میں تبدیلی بھی کی جاتی ہے۔ مثلاً کسی طبیب کے پاس کوئی مریض جائے اور کہے ڈاکٹر صاحب مجھے بہت بخار ہوا ہے، پلیز مجھے آپ کروسین دے دیں، ڈاکٹر کہے گا بھائی آپ میرے پاس علاج کے لیے آئے ہیں، तो नब्ज़ दिखाना तो आपका काम है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबान से बता दें आपको क्या फ़ील हो रहा है, बाकी मुझे केरोसिन देना है या करोसिन देना है वो तो मैं जानूँ। तो मरीज़ दवाई भी खुद ही तजवीज़ करे कि ये दवाई दे दो, तो ये तो शान नहीं है उसकी। तो कई मरतबा आके इस तरह से कहते थे मुझे इस तरह से लेके चलो, ऐसे अपने आप को जैसे मुर्दा बदस्त ज़िंदा, जैसे मुर्दा ज़िंदा के हाथ में होता है, इस तरह मरीज अपने आप को अपने शेख के हवाले कर दे और वो जो कहे अमन ना उसे रखना, उस पर अमल करे, फिर देखो इंशाल्लाह नफ़ा होगा। लिहाजा एक तस्वीर इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की। इस्तिग़फ़ार छोटे से छोटा चाहे तो यही पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वातूब इलैह, या सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, या तो ये पढ़ें या सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल अमल पे खड़ा होना है, पैर चलना शुरू करना है। एक तस्वीर इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की और एक तीसरे कलमे की सुबह और शाम पढ़ें, इंशाल्लाह इससे अंदर एक नूर पैदा होना शुरू होगा। जब एक्टिव होंगे, जैसे बच्चा दूध पीता है शुरू शुरू में और फिर एक्टिव होना शुरू होता है, फिर दो दांत निकाल लेता है, फिर माँ उसको दो रोटी दो गोटी देना शुरू करती है जी, और फिर माशाल्लाह मजबूत से मजबूत ग़िज़ाएँ खाना शुरू करता है। तो शुरू शुरू में ये जिक्र करें, पाओ पारा कुरान पाक की तिलावत रमज़ान, चलते फिरते उठते बैठते ध्यान तवज्जो अल्लाह की तरफ, और नमाज की पाबंदी आगे पीछे की सुन्नतों के अहतमाम के साथ, और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। बस ऐसे साले बन के ज़िंदगी गुजारें, मामूलात की पाबंदी करें, इंशाल्लाह आगे चलकर जैसी कैफियत होगी उस पर आगे फैसला करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक दें। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह।